नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य में दाखिल खारिज की नई व्यवस्था आज से लागू। एक ही आवेदन पर परिवार के सभी हिस्सेदारों के नाम पर हो सकेगी बंटवारा भूमि की जमाबंदी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा में आंतरिक कलह सत्ता पर आई। पार्टी विधायक रामेश्वर महतो ने कहा, पुत्र मोह में गलत निर्णय ले रहा है पार्टी नेतृत्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मन की बात कार्यक्रम की 129वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रदेश के अधिकांश भागों में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए शीत दिवस का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। और दशमेश गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 359वें प्रकाश पर्व को लेकर तख्त श्री हरिमंदिर पटना साहिब में विशेष दीवान का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि राज्य में आज से एक ही आवेदन के आधार पर पूरे परिवार की जमीन की जमाबंदी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री सिन्हा ने बताया कि बिहार भूमि पोर्टल पर बंटवारा दाखिल खारिज की नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। अब खतियानी भूमि के बंटवारे के बाद एक ही आवेदन के आधार पर सभी हिस्सेदारों के नाम से दाखिल खारिज किया जाएगा। इससे आम लोगों को अनावश्यक कठिनाइयों से मुक्ति मिलेगी।
एक नई पहल की शुरुआत आज की जा रही है। बंटवारा दाखिल खारिज पोर्टल की शुरुआत। बारीक बंटवारा अब आसान हो जाएगा। बंटवारा दाखिल खारिज की व्यवस्था आज 27 दिसंबर से एक नए रूप में लागू किया जा रहा है।
बिहार राजस्व सेवा संघ ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा की भाषा शैली को लेकर शिकायत की है। संघ ने कहा है कि जनता दरबार के नाम पर उप मुख्यमंत्री राजस्व कर्मियों और अधिकारियों को लगातार अपमानित कर रहे हैं। संघ ने इस पर तुरंत रोक नहीं लगाने की स्थिति में काम बंद करने की चेतावनी दी है। इधर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि वे जनहित में कड़े निर्णय लेने का सिलसिला जारी रखेंगे। श्री सिन्हा ने कहा कि उन्हें बिहार राजस्व सेवा संघ की ओर से ऐसा कोई शिकायती पत्र नहीं मिला है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा में परिवारवाद को लेकर आंतरिक कलह सतह पर आ गई है। पार्टी के 3 विधायकों ने केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी विधायक रामेश्वर महतो ने कहा कि पुत्र मोह में आकर नेतृत्व पार्टी के सिद्धांतों को तिलांजलि दे रहा है। उन्होंने कहा कि यदि समय अनुकूल निर्णय नहीं होते हैं तो वे अलग रास्ता चुन सकते हैं।
मुझे लगता है कि जो 4 विधायक थे, चारों में से किन्हीं को भी बना सकते थे और बेटा के लिए इंतजार किया जा सकता था। ऐसी कोई समस्या और ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी कि इतना जल्दी आप पूरे परिवार को एक साथ समाहित कीजिए राजनीति में। मुझे लगता है कि नेता को पुनः विचार करना चाहिए अपने फैसले पे और उसमें सुधार हो सके तो करना चाहिए, जिससे कि पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता सबके हित में हो।
इधर रालोमू नेता और पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने पार्टी में टूट के सवाल को टाल दिया। पत्रकारों के सवाल के जवाब में उन्होंने केवल इतना कहा कि विपक्ष ख्याली पलाव बना रहा है।
विभाग से जुड़े किसी भी सवाल को पूछ सकते हैं। विपक्ष की बात पूछ रहे हैं तो विभाग को विपक्ष को ख्याली पलाव पकाने में माहिर है तो पकाते रहे।
विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने राज्य सरकार पर विपक्षी दलों के नेताओं को परेशान करने का आरोप लगाया है। श्री सहनी ने पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार लोगों के हित के काम नहीं कर अपना पूरा फोकस विपक्ष की आवाज दबाने में लगा रही है। उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी को आवाज खाली करने का निर्देश इसी का हिस्सा है।
सरकार के पास कोई काम करने के लिए विजन नहीं है, जिससे राज्य के लोगों को किसी को कोई मतलब नहीं है। वो काम ये सरकार कर रहे हैं, लोगों को घर से बेघर करना, चाहे वो नेता हो या आम जनता हो, गरीब हो। 2 दशक से राबड़ी जी इस आवास में रह रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरीके से उनको परेशान किया जा रहा है। जो अभी एनडीए की सरकार है वो विपक्ष का आवाज को दबाने का कोशिश कर रहे हैं, उनको डराना धमकाना का कोशिश कर रहा है, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पूर्वाह्न 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह कार्यक्रम की 129वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर किया जाएगा। इसके अलावा आकाशवाणी की वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी ये उपलब्ध होगा। कार्यक्रम को प्रसार भारती के वेब्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी सुना जा सकता है। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारण होगा। इसके तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे से भी सुना जा सकता है। वर्ष 2025 भारत की विकास यात्रा में एक निर्णायक अध्याय के रूप में जाना जाएगा। इस वर्ष ने नीतियों को प्रगति में बदलते और इरादों को साकार होते देखा है। विशेष श्रृंखला सुधारों का वर्ष में आज प्रस्तुत है नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में हुए विभिन्न कर सुधारों पर एक रिपोर्ट।
भारत का कर इतिहास देश और उसके नागरिकों के बीच बदलते रिश्ते का एक दर्पण है। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा चुनौती दिए गए दमनकारी नमक कर से लेकर 1970 के दशक में 97.5% तक लगने वाले आयकर दरों तक अत्यधिक टैक्स ने अविश्वास, डर के कारण नियमों का पालन और बड़े पैमाने पर कर चोरी को बढ़ावा दिया था। मोदी सरकार के कार्यकाल में हुए विभिन्न कर सुधार इस परंपरा में एक स्पष्ट बदलाव को दर्शाते हैं।
2014 से पहले इतने सारे टैक्स थे, यानी एक प्रकार से टैक्स का जंजाल था और उसके कारण बिजनेस की कॉस्ट और परिवार का बजट दोनों ही कभी भी संतुलित नहीं हो पाते थे, उसे कंट्रोल करना मुश्किल था। 1000 रुपये की शर्ट पर 170 रुपये टैक्स लगता था। साल 2017 में जब हम GST लाए तो आने के बाद पहले GST में 117 से कम होकर के 50 हो गया और अब 22 सितंबर को लागू हुए रेट्स के बाद 1000 रुपये के उसी शर्त पर सिर्फ 35 रुपये टैक्स के रूप में देने होंगे।
भारत ने 60 लाख रुपए से अधिक की अब तक की सबसे बड़ी दिवाली बिक्री, नवरात्रि में मजबूत मांग और अक्टूबर में रिकॉर्ड ऑटोमोबाइल बिक्री दर्ज की। दूसरी ओर आयकर में छूट की सीमा 2014 में 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 2025 में 12 लाख रुपए कर दी गई, जिससे मध्यम वर्ग को बड़ी राहत प्राप्त हुई है। यह कर सुधार भारतीय अर्थव्यवस्था और नीति निर्माण में विश्वास, सरलता और पारदर्शिता लाकर विकास और अनुपालन को बढ़ावा दे रहे हैं। ईशानी यादव के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna पर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में आज मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए। 3 दिन के इस सम्मेलन का उद्देश्य राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं पर सतत बातचीत के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देना है। यह सम्मेलन प्रधानमंत्री के सहकारी संघवाद के दृष्टिकोण पर आधारित है। एक रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री के सहकारी संघवाद के दृष्टिकोण पर आधारित ये सम्मेलन केंद्र और राज्यों को एक मंच पर लाकर देश की मानव पूंजी क्षमता और समावेशिता को बढ़ाने तथा भविष्य में विकास की गति तेज करने के लिए एकीकृत रोडमैप तैयार करेगा। सम्मेलन में विकसित भारत के लिए मानव पूंजी विषय पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं और रणनीतियों को शामिल किया जाएगा। इस दौरान 5 प्रमुख क्षेत्रों पर विस्तार से चर्चा होगी। ये क्षेत्र हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था, स्कूली और उच्च शिक्षा तथा कौशल विकास, खेल और पाठ्येतर गतिविधियां। सम्मेलन के दौरान 6 विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे। सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ क्षेत्र विशेषज्ञ भी भाग ले रहे हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
सिखों के 10वें गुरु और खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 359वां प्रकाश पर्व आज श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर तख्त श्री हरिमंदिर पटना साहिब में सिख संगतों की उत्साही भीड़ उमड़ रही है। एक रिपोर्ट।
साहिब तख्त श्री हरिमंदिर पटना साहिब शबद कीर्तन और गुरुवाणी से गुंजायमान है। यहाँ विशेष दीवान सजाया गया है। मौका है दशमेश गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जन्मोत्सव का। सन 1666 में गुरु महाराज का जन्म श्री गुरु तेग बहादुर जी और माता गुजरी जी के घर यही पटना साहिब में हुआ था। पंजाब के श्री आनंदपुर साहिब जाने से पहले गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना शुरुआती समय भी इसी पावन भूमि पर बिताया। इस पुण्य अवसर पर रागी जत्थे विभिन्न गुरुद्वारों, गुरु का बाग, गुरुद्वारा मैनी संगत और गुरुद्वारा बाल लीला में गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन, उनके बलिदान तथा उनके साहिबजादों और माता गुजरी जी की शहादत को दर्शाते हुए शबद कीर्तन का गायन कर रहे हैं। भारत और विदेश से हजारों श्रद्धालु गुरु जी की शिक्षाओं और इंसानियत की रक्षा के लिए उनके परिवार द्वारा दिए गए अतुलनीय बलिदानों का स्मरण करते हुए गुरुद्वारों में नतमस्तक हो रहे हैं। प्रकाश पर्व में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में पटना साहिब पहुंची संगत निहाल हो रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दशमेश गुरु के जन्मोत्सव पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म स्थान तख्त श्री हरिमंदिर पटना साहिब की इस वर्ष की यात्रा की तस्वीरें साझा करते हुए कहा है कि यह गुरु महाराज के साहस, करुणा और त्याग के प्रतीक हैं। दशमेश गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 359वें प्रकाश पर्व पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज तख्त श्री हरिमंदिर जी परिसर पटना साहिब पहुंचकर मत्था टेका और राज्य के सुख शांति की कामना की। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि गुरु गोविंद सिंह जी शौर्य, साहस और त्याग की प्रतिमूर्ति थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जीवन संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणादायी है। सर्द पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में शीत दिवस की स्थिति बनी हुई है। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के चलते आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। अधिकांश स्थानों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और दक्षिणी हिस्सों के विभिन्न जिलों में शीत दिवस का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
27 दिसंबर 2025 को राज्य के उत्तर, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों के जिलों के कुछ स्थानों में शीत दिवस जैसी स्थिति होने की संभावना है। राज्य के उत्तर, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य के जिलों के कुछ स्थानों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के शेष भाग के कुछ स्थानों में मध्यम से घना स्तर का कोहरा छाए होने की संभावना है।
विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 5.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ गया राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। इधर घने कोहरे के कारण दृश्यता का स्तर कम होने से सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो रहा है। पटना, दरभंगा और पूर्णिया हवाई अड्डे से कई उड़ानें रद्द कर दी गई और कई उड़ानें देर से परिचालित की जा रही हैं। वहीं लंबी दूरी की कई रेलगाड़ियों का परिचालन भी काफी विलंब से हो रहा है। गोपालगंज जिले के प्रसिद्ध सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर में चोरी के मामले के आरोपी को थावे थाना के रिखई टोला में पकड़ने गई एसआईटी टीम पर अपराधियों ने गोलीबारी की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से इजमामुल आलम नाम का अपराधी घायल हो गया। मधुबनी में आयोजित राज्य स्तरीय युवा उत्सव के नवाचार एवं विज्ञान मेला में सहरसा जिले ने बिहार में प्रथम स्थान हासिल किया है। अररिया के आरएस थाना क्षेत्र अंतर्गत हरियाबाड़ा में पुलिस ने छापेमारी कर 380 किलो गांजा के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में दाखिल खारिज की नई व्यवस्था आज से लागू। एक ही आवेदन पर परिवार के सभी हिस्सेदारों के नाम पर हो सकेगी बंटवारा भूमि की जमाबंदी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा में आंतरिक कला सतह पर आई। पार्टी विधायक रामेश्वर महतो ने कहा, पुत्र मोह में गलत निर्णय ले रहा है पार्टी नेतृत्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मन की बात कार्यक्रम की 129वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रदेश के अधिकांश भागों में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए शीत दिवस का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। और दशमेश गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 359वें प्रकाश पर्व को लेकर तख्त श्री हरिमंदिर पटना साहिब में विशेष दीवान का आयोजन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।